الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله مولانا العظيم قیامت کے سلسلے میں ضروری حدیثیں آپ کی خدمت میں سنائی جا رہی ہیں. قیامت کی جو بالکل آخری بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا میں ہوگی اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا. آج اس نشانی کے سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کو سنائی جائے گی. اتنا خلاصے میں سمجھنا چاہیے کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں زمین کا پورا نظام بدلنے والا ہے, اس طرح آسمان کا بھی پورا نظام بدلنے والا ہے. یہ دنیا جو اس وقت جس ترتیب سے چل رہی ہے قیامت کے پہلے پہلے یہ دنیا کے اس پورے نظام کے اندر تبدیلی آ جائے گی, اور جو اس وقت نظام ہمارے سامنے ہے یہ نظام دنیا کا باقی رہے گا نہیں, بلکہ زمین کا پورا نظام جو ہے بدل جائے گا. جیسے زمین کا نظام بدل جائے گا بالکل اسی طریقے سے آسمانوں کا نظام بھی, یعنی آسمان کی دنیا بھی بدلنے والی ہے. اور آسمان کی دنیا بدلنے کی ایک بہت بڑی بات ہے, سورج جو آسمان کا ایک بہت بڑا ستارہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی تبدیلی کر دیں گے. اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ستارے پیدا فرمائے ہیں. یہ جتنے بھی ستارے ہیں उसमें दो बड़े हमको नजर आते हैं, एक है सूरज और दूसरा है चांद। इन दोनों के निजाम को भी अल्लाह ताला पूरा बदल देंगे कयामत के आने से पहले पहले। इस सिलसिले की हदीसें सुनने से पहले इब्ने माजा शरीफ की एक अजीब हदीस सुनाता हूं कि क्या हाल होगा दुनिया में कयामत से पहले। हदीस शरीफ का खुलासा है कि इस्लाम की दुश्मनी इस कदर हो जाएगी जैसे कि कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, यानी एक कपड़ा पुराना हो जाए तो उस पुराने कपड़े को लोग इधर उधर कर देते हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर कोई समझदार है तो पुराने कपड़े का कैसा सदका करना और दूसरे को दे देना वो सोचता है, और अगर दीनी समझ नहीं है तो पुराने कपड़े बेच करके कैसे पैसे कमाना या पुराने कपड़ों को फाड़ चीर करके उसको किचन की सफाई, घर की सफाई में इस्तेमाल करना, ये लोग सोचते हैं। बिल्कुल यही हाल कयामत से पहले पहले दीन के बारे में लोगों का होने वाला है। हदीस में आगे फरमाया, ऐसे हालात आ जाएंगे दुनिया में कि किसी को ये भी पता नहीं होगा कि रोजा क्या होता है। ऐसे हालात दुनिया में हो जाएंगे। नमाज क्या होती है, कुर्बानी क्या होती है और सदका क्या होता है, लोगों को इस सिलसिले में कोई जानकारी ही बाकी नहीं रहेगी। इस हदीस पर मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, चूंकि दीनी एतबार से कमजोर बस्तियों में अल्हम्दुलिल्लाह जाना आना रहता है, जिसको बंजर बस्तियां कहते हैं। गुजरात की बात कर रहा हूं, बाहर की नहीं। एक जगह जाना हुआ, 65 साल के एक मुसलमान से बातचीत हुई। उस बेचारे ने जिंदगी में पहली मर्तबा सुना कि कुरान कोई चीज है। तब ये हदीस समझ में आती है कि कयामत से पहले रोजा क्या, नमाज क्या, कुर्बानी क्या, सदका क्या, लोग उसको भी नहीं जानेंगे। अब समझो कि कुरान क्या चीज है वो ही उनको मालूम नहीं, जिंदगी में पहली मर्तबा कुरान का लफ्ज सुना, तो आगे जो है दीन की दूसरी जानकारी तो कहां से हासिल होगी। आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान एक रात में उठा ली जाएगी। ऐसा वक्त आएगा दुनिया में सिर्फ कागज बाकी रह जाएंगे, अंदर से आयत उठा ली जाएगी, जमीन पर एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी। कैसे लोग जमीन पर रहेंगे? हदीस के प्यारे प्यारे अल्फाज है, जमीन पर उम्मत का सिर्फ एक हिस्सा यानी घिसे पिटे बड़ी उम्र के मर्द और घसी पिटी बड़ी उम्र की औरतें बाकी रह जाएगी। यानी थोड़ा बहुत ईमान जानने वाले कैसे लोग बचेंगे? जो बड़ी उम्र के होंगे मर्द औरत वो बच जाएंगे। नतीजा निकला, नौजवानों में से दीन बिल्कुल निकल जाएगा। ये इस हदीस से नतीजा निकलता है। जो थोड़ा बहुत नाम का दीन होगा वो भी बड़ी उम्र के लोगों में नजर आएगा, और उन बड़ी उम्र के लोगों का क्या हाल होगा वो भी आगे हदीस में है। वो बड़ी उम्र के लोग यूं कहेंगे, हमने अपने बाप दादाओं को ये अल्फाज पढ़ते हुए सुना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बड़ी उम्र के दीनदार वो यूं कहेंगे, हमने अपने बाप दादाओं को ये अल्फाज पढ़ते हुए सुना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लिहाजा हम भी ये अल्फाज अदा करते हैं। बाप दादा पढ़ते थे इसलिए हम पढ़ते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, ये चीज के नक्शे भी देखे हैं। पहली मर्तबा 1999 में सेंट्रल अमेरिका में पनामा मुल्क का सफर हुआ तो कुछ गौरव खौस की आदत है, तो मैंने वहाँ लोगों को पूछा कि इस मुल्क में इस्लाम सबसे पहले आपकी मालूमात में कब आया है, कब सबसे पहले मुसलमान इस मुल्क में आए। वहाँ अपने इंडिया, पाकिस्तान, अरब मुल्कों के बहुत से मुसलमान रहते हैं, तो उन्होंने अजीब बात सुनाई कि 100 साल पहले 1800 में जब कैनल पनामा, पनामा नहर खोदी गई जो अटलांटिक और पैसिफिक समंदर को जोड़ती है, उस वक्त पर हिंदुस्तान से बहुत सारे मजदूर नहर खोदने के लिए आए थे। उन मजदूरों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी थी। फिर इबरत के लिए अल्लाह मेरे आपके घराने में और उम्मत में आइंदा ऐसे हालात न लावे अल्लाह ताला। कब वो मुसलमान यहां आए, कमाने में लग गए, मजदूरी में लग गए, पैसे कमाना उनका मकसद था, मजदूरी के लिए आए थे। वो जो इंडिया से आए थे वो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता इंतकाल कर गए, जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी होती गई। फिर उनकी औलाद आई, कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं, तो का एक वक्त तो वो आया कि उनकी जो तीसरी नस्ल आई, उस तीसरी नस्ल को देखने वाले मुसलमान इस वक्त मौजूद है जो अपने यहां से अभी अभी गए। वो का वो देहातों के अंदर फेरी फिरने का काम करते हैं, अभी गए हुए मुसलमान बहुत सारे, तो फेरी के लिए जाते हैं। तो दोपहर में नमाज का वक्त होता है, तो पहले छोटे छोटे गांवों में इबादत खाने नहीं थे, तो किसी को कहा कि आपके घर के ऊपर जरा हमको पानी दो और एक जगह दो, दो तीन आदमी मिल करके हम जमात करके नमाज पढ़ ले रहे, इजाजत मांग दे। अब उन्होंने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अजान दी, नमाज पढ़ी, तो 70-80 साल की बड़ी बूढ़ी औरतें और मर्द आकर के यूं कहते थे कि जब हमारे बाप दादा थे तो वो ऐसा काम करते थे जो काम इस वक्त तुम कर रहे हो, यानी अजान और नमाज पढ़ने का। हमारे बास बड़े बूढ़े बाप दादा ऐसा करते थे, वो या नस्ल के अंदर वो मुसलमान थे, लेकिन नऊज़ुबिल्लाह मेहनत नहीं हुई तो वो सब इस्लाम से निकल करके मुर्तद हो गए। ये जो हदीस में यहां फरमाया गया है कि बड़ी बूढ़ी औरतें और बड़ी उम्र के मर्द बाकी रहेंगे और वो ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, इसलिए हम उनकी नकल उतार करके पढ़ते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। तो रावी ने पूछा कि सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का क्या फायदा, जबकि वो नमाज नहीं जानते कि नमाज क्या होती है, रोजा नहीं जानते रोजा क्या होता है, कुर्बानी नहीं जानते कुर्बानी क्या होती है, सदका क्या होता है, कुछ नहीं जानते, फिर कलिमा पढ़ने का क्या मतलब, क्या फायदा। तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हो, जो इस हदीस के रावी सहाबी है, उन्होंने उस सवाल करने वाले की तरफ से मुंह हटा लिया कि कैसा सवाल तुम करते हो। फिर उस आदमी ने सवाल किया तो हजरत हुजैफा ने फिर अपना मुंह फिरा लिया। फिर उसने तीसरी मर्तबा सवाल किया तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपना मुंह फिरा लिया। और फिर तीसरी मर्तबा हजरत हुजैफा ने इरशाद फरमाया, जानते हो उन मुसलमानों के लिए भी ये कलमा जहन्नम से नजात का जरिया बनेगा, भले वो नमाज नहीं जानते, रोजा नहीं जानते, कुर्बानी नहीं जानते, सदका नहीं जानते, लेकिन ये कलिमा इतना जो जानते हैं बाप दादा के जमाने से नकल होता हुआ का, उसकी बरकत से भी वो जहन्नम की आग से नजात पा जाएंगे। कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी। जब इस हदीस के अंदर एक तरफ उम्मीद की बात है कि कलिमे की बरकत से नजात, वहां डर की भी बात है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नमाज कुर्बानी हज सदका कुछ नहीं जानते होंगे और कलमा भी जो पढ़ेंगे वो सिर्फ अपने बाप दादा की नकल में पढ़ेंगे। کلمے کی حقیقت وہ جانتے نہیں ہوں گے. ایک دوسری حدیث عجیب مضمون ہے, یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو یہ حدیث ہمیں اس لیے سننی ہے کہ کہیں ہمارے اوپر یہ فٹ نہ آ جاوے, اللہ اس کا مصداق بننے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاملات میں سوائے زیادہ سے زیادہ کنجوسی کے اور کچھ نہیں ہوگا. یعنی امت میں ایک دور آئے گا کہ معاملات جو کریں گے لوگ تو اس میں لوگ آپس میں کنجوس بن جائیں گے, بکیل بن جائیں گے, کنجوسی کرنے والے ہو جائیں گے. آگے ارشاد فرمایا, دنیا میں غریبی میں خوب جو ہے زیادتی ہو جائے گی, غریبی بڑھتی چلی جائے گی. پہلے آپ نے دجال والی حدیث میں سنا ہے کہ ایک سر گائے کا 100 دینار میں بکے گا, 100 سونے کے سکے میں بکے گا. اب ظاہر بات ہے کہ غریبی اس زمانے میں کتنی ہوگی, اور اس وقت دنیا کا حال یہی ہے, غریب بڑھتا جا رہا ہے غریبی میں, اور چند مالدار دنیا میں مالداری میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تب اس حدیث شریف کے اوپر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے, لوگوں میں زیادہ لوگ بخیل ہو جائیں گے, اور قیامت سب سے خراب لوگوں پر آئے گی, اور اس وقت پر کوئی ہدایت کی بات کہنے والا نہیں ہوگا, صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ کر ہدایت کی باتیں بتائیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے, انتقال کر جائیں گے, تو پھر اس کے بعد تو دنیا کے حالات اور بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے. اب سنیے, سورج کا آسمان کے اندر جو پورا نظام بدل جائے گا تو اس کی کیسی حالت ہوگی. عجیب روایت ہے, یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے وہاں تک قیامت آئے گی نہیں. مغرب یعنی جدھر ڈوبتا ہے, وہاں سے نہ نکلے وہاں تک قیامت آئے گی نہیں. جب وہ طلوع ہو جائے گا, نکلے گا مغرب سے, اور سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے, تو اس کو دیکھنے کے بعد سب لوگ ایمان لے آئیں گے, لیکن کسی کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا. ایمان میں کوئی نیکی کا کام کیا وہ بھی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا ایمان فرعون جیسا ایمان ہو جائے گا. قرآن میں موجود ہے, فرعون بھی ایمان لایا, لیکن کب؟ جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا اور خدا کی غیبی دنیا نظر آئی تب ایمان لایا. حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے کہا کہ اب تیرا ایمان ہمارے یہاں قبول نہیں ہوگا. تو سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا یہ ایک غیبی قیامت کی نشانی ہوگی, اور اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا وہ بھی قبول نہیں, کوئی نیک کام کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا. آگے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت ایسے حالات میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا دیا ہے. جیسے کسی کے یہاں کوئی دکان کپڑے کی ہو اور کوئی گراہک آوے تو کیا کرتے ہیں, کپڑا کھول دیتے ہیں, وہ دیکھتا ہے, بھاؤ تال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا کھول دیا اور وہ خرید نہیں سکے گا, وہ بیچ نہیں سکے گا, اور کپڑے کو لپیٹ نہیں سکے گا, اور اچانک قیامت آ جائے گی. لوگ کاروبار کرتے ہوں گے, وہ سودا پورا نہیں ہوگا, ڈیل نہیں ہوئی, لپیٹ بھی نہیں سکے کپڑے کو, کٹنگ بھی نہیں کر سکے, اور اچانک قیامت آ جائے گی. آگے ارشاد فرمایا, ایک آدمی نے اپنے گھر میں جو جانور پالے ہیں اس کا دودھ نکالا محنت کر کے, اور دودھ لے کر کے وہ لے کے جا رہا ہے گھر کی طرف, اور اس دودھ میں سے ایک گھونٹ بھی پی نہیں سکے گا, اور اچانک قیامت آ جائے گی. آگے ارشاد فرمایا, ایک آدمی حوض بنا رہا ہوگا, یعنی ٹنکی پانی کی یا حوض, پلاسٹر چل رہا ہے, اور اس میں سے جانور کو پانی پلا نہیں سکے گا, اور قیامت آ جائے گی. بلکہ حدیث کا آخری لفظ تو عجیب ہے، ایک آدمی نے دسترخوان پر بیٹھ کے لقمہ اٹھایا اور وہ لقمہ منہ میں پہنچے اس سے پہلے قیامت آ جائے گی، اتنی اچانک قیامت آئے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے عجیب سوال کیا حضرت ابو ذر کو، ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج روزانہ کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج چلتے چلتے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے. روزانہ روزانہ یہ سورج چلتے چلتے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے، وہاں جا کے ٹھہرتا ہے اور اللہ کے عرش کے سامنے یہ سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے جاؤ، جہاں سے تم آئے تھے وہیں جاؤ، یعنی دنیا میں واپس جاؤ. تو سورج آتا ہے دنیا میں واپس. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ سورج کب گیا اللہ کے عرش کے سامنے، اور کب اس نے سجدہ کیا، اور کب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جاؤ واپس دنیا میں. روزانہ سورج جاتا ہے، کب جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی نظام سسٹم دنیا کی ایسی ہے کہ کہیں نہ کہیں سورج موجود ہوتا ہے. یہ ڈوبتا ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے، طلوع ہوتا ہے دوسرے ملک کے اعتبار سے، یہ چالو ہی رہتا ہے. تو یہ سجدہ کب کرتا ہے؟ تو دیکھو حدیث میں حضور نے فرمایا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کو حکم دیتے ہیں تو دوبارہ نکل کر کے وہ دنیا میں آتا ہے. اور اس کی آسان مثال سمجھنے کی، جو سپر فاسٹ ٹرینیں ہوتی ہے وہ چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں سے بھی اجازت لے کر وہ چلتی ہے. اور وہ اجازت کیسے ہوتی ہے؟ کہ وہ اسٹیشن ماسٹر نکل کر کے باہر کھڑا ہوتا ہے ہری جھنڈی لے کر کے، یا لال لائٹ ہری لائٹ دکھا کر کے، یہ اجازت ہے. وہ ٹرین اجازت لے بھی رہی ہے اور چل بھی رہی ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہوتا ہے. یہ دنیا میں ایک سمجھنے کی مثال ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزانہ اللہ کے عرش کے سامنے جاتا ہے، عرش کے نیچے جا کے رک جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے کہ جاؤ دنیا میں واپس، جہاں سے آئے تھے وہاں طلوع ہو جاؤ، تب جا کر یہ دنیا میں آتا ہے. سورج جیسا سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، فرما بردار اور نافرمان، ماننے والا نہ ماننے والا، خدا کے اوپر ایمان لانے والا خدا کے اوپر ایمان نہ لانے والا، یہ جو دو پارٹی ہے نا، یہ صرف انسان اور جنات میں ہے. یہ دو پارٹی، ایمان والی کافر، ماننا نہ ماننا، فرما برداری نافرمانی، یہ دو جماعت دو پارٹی صرف انسان اور جنات میں ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ایک ہی پارٹی ہے، وہ اللہ کو ماننے والے. تمام مخلوق، تمام جانور، تمام پرندے، تمام فرشتے، دوسری عجیب عجیب روح، سب چیزیں ایک ہی پارٹی ان کی، وہ اللہ کو ماننے والے. یہ دو پارٹی بنی ہے صرف دو مخلوق میں، ایک انسان میں ایک جنت میں. اور خود قرآن میں بات موجود ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. جنات کہنے لگے کہ ہمارے اندر کچھ نیک ہے ایمان والے، اور کچھ نیک کے علاوہ دوسرے ہیں، کافر ہیں، مشرق ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، سب الگ الگ ہیں. تو دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام مخلوق میں ایک ہی پارٹی کے، وہ سب اللہ پر ایمان لانے والے. और ये दो जमात बनी सिर्फ इंसान और जिन्नात की। सूरज भी अल्लाह के सामने सजदा करता है, वो लौटता है अपने मामूल के मुताबिक, रोजाना ये चलेगा, लेकिन एक दिन आएगा वो चला, उसमें कोई चीज नई नहीं, रोजाना के मामूल के मुताबिक अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर रुका, सिजदा किया, लेकिन उस दिन उसका सिजदा कबूल नहीं होगा और वो कहेगा कि अल्लाह मैं रोजाना की अपनी जगह मशरिक पूर्व में से निकलूं, तो उसको कहा जाएगा कि नहीं, आज मशरिक से निकलने की तुझे इजाजत नहीं है, जाओ और तुम जाकर के मगरिब से निकलो, जहां डूबे वहीं से निकलो। चुनांचे उस दिन सुबह के अंदर सूरज मगरिब की तरफ से निकल करके आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये कब होगा? का ये उस वक्त होगा जब किसी इंसान ने जो आज तक ईमान नहीं लाया था, उसका ईमान उसको फायदा नहीं देगा और उसका नेक अमल भी उसको फायदा नहीं देगा, उस दिन ये होगा। फिर हुजूर ने सूरह यासीन वाली आयत तिलावत फरमाई, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि सूरज की ये रुकने और ठहरने की जगह है। अंदाजा लगाओ कि इतना बड़ा सूरज, कहते हैं कि जमीन से कई गुना बड़ा ये सूरज है, वो भी रोजाना अल्लाह ताला को सजदा करता है। काश के हम मुसलमान रोजाना अल्लाह के सामने सजदा करने वाले बन जावे, हमको इसकी तौफीक नसीब हो जावे। सूरज जैसी सूरज मखलूक वो भी सजदा करे अल्लाह के सामने, और ये इंसान जिसको खुदा ने अकल दी समझ दी वो सजदा न करे तो कितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान कहा जाए। हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हों से एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मगरिब की तरफ में तौबा का एक दरवाजा बनाया है, इसका नाम ये बाबू तौबा, तौबा का दरवाजा, ये मगरिब की तरफ में खुदा ने बनाया है। कितना बड़ा है ये तौबा का दरवाजा, कि इतना चौड़ा है वो दरवाजा कि एक तरफ से दूसरी तरफ तुम जाओ तो 70 साल में तुम पहुंच सको। एक आदमी देखो अपनी यहां ये दरवाजा है, इसकी चौड़ाई अभी कोई पूछे तो कहा 5 सेकंड की, कि इधर से इधर हम 5 सेकंड में आराम से या 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे। अंदाजा लगाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तौबा का दरवाजा इतना चौड़ा है कि एक आदमी एक तरफ से निकल के दूसरे तरफ जावे तो 70 साल उसको लग जावे, इतना चौड़ा है वो तौबा का दरवाजा। का इस दरवाजे को अल्लाह ताला खुला रखते हैं, जो भी तौबा करना चाहे अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करते हैं, लेकिन जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा अल्लाह उस तौबा के दरवाजे को बंद कर देंगे, वो आखिरी दिन होगा उस दरवाजे के बंद होने का। माबूद तौबा, तौबा का दरवाजा वो उस दिन अल्लाह सुबहानहू व तआला बंद कर देंगे और फिर उसको कभी नहीं खोलेंगे। एक हदीस में इरशाद फरमाया, इन अव्वल अल आयात खुरूजन तुलू अश्शम्स मिन मगरिबिहा व खुरूज दाब्बत अलन्नास दुहन व अय्युहुमा मा कानत क़ब्ला साहिबतिहा फल उखरा अला इसरिहा करीबा औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहली निशानी यानी बड़ी बड़ी निशानी कयामत की, वो सूरज मगरिब की तरफ से निकलेगा और चाश के वक्त पर वो बड़ा जानवर निकलेगा, उनमें से जो भी पहले जाहिर हो जावे दूसरी उसके बाद फौरन जाहिर होगी और कयामत कायम हो जाएगी। उस रात की एक निशानी भी अजीब आई हदीस में, जिस रात के बाद सुबह में सूरज मगरिब से निकलेगा उसकी निशानी भी बड़ी अजीब है वो रात की। कैसी निशानी? हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाते हैं, अल्लाह अपनी रहमत के हाथ फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? रात में, ताकि दिन में गुनाह करने वाले रात में तोबा कर ले रहे, इसके लिए अल्लाह रात में अपनी रहमत के हाथ फैलाते हैं। फिर अल्लाह ताला दिन में भी जो है अपने हाथ रहमत के फैलाते हैं, ताकि रात में गुनाह करने वाले तोबा कर ले रहे। कितने मेहरबान अल्लाह कि रात में रहमत के हाथ फैलाए कि दिन में गुनाह करने वाले तोबा करे, और दिन में रहमत के हाथ फैलाए ताकि रातों को तोबा गुनाह करने वाले तोबा कर ले। इसीलिए दो वक्त में दुआ अल्लाह की यहां जरूर कबूल हो जाती है, उसका खास ध्यान रखो। एक रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक से पहले पहले, और आजकल तो बहुत आसान है वो दुआ करना, 5, 18, 19 के ऊपर सुबह सादिक हो रही है, ज्यादा नहीं। मैं आपको दरखास्त करूं 4:45 बजे उठ जाओ आप, 11 बजे सोकर के 4:45 बजे उठ जाओ, तकरीबन 6.5 घंटे की नींद हो गई, आधा घंटा मिल जाएगा, 4 रकात तहज्जुद पढ़ो और 2-4 आंसू बहाओ का दिन भर के गुना अल्लाह रात में रहमत के हाथ फैला देते हैं, ताकि बंदा जो है तोबा कर ले और माफी मांग ले। और दूसरा वक्त हदीस में आता है, हर फर्ज नमाज के बाद मांगी हुई दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमा लेते हैं, हर फर्ज नमाज के बाद। कितना प्यारा मौका है, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको मुझको ये तौफीक दी कि 5 वक्त मस्जिद में आते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान है 5 वक्त मस्जिद में लावे, करम है मालिक का। नमाज के बाद इतनी सखावत कर लो कि अपने हाथ उठा करके अपने मालिक से 2-4 मिनट ही दुआ मांग लो। इमाम साहब अपनी मांगे, हम अपनी मांगे, कोई जरूरी नहीं कि जो इमाम साहब ने मांगी वही हम मांगे, या इमाम की दुआ पर आमीन के। हर आदमी आजाद है, अल्लाह हर नमाजी की दुआ फर्ज नमाज के बाद कबूल फरमाते। खूब एहतमाम से मांग लो अल्लाह ताला से, ये दो वक्त की कदर कर लो, एक रात का आखिरी हिस्सा और एक फर्ज नमाज के बाद, उस वक्त अल्लाह मोमिन की दुआ जरूर कबूल फरमा लेते हैं। आगे फरमाते हैं, एक रिवायत का खुलासा है कि वो रात जिस रात के बाद सुबह में सूरज मगरिब से निकलेगा का वो रात बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी रात होगी। वो कितनी लंबी रात? कि रात में चलने वाले मुसाफिर चल चल के घबरा जाएंगे, थक जाएंगे, कह रहे ये रात खत्म ही नहीं हो रही, कैसी रात है, घबरा जाएंगे मुसाफिर लोग, और बच्चे सोते सोते उकता जाएंगे। बच्चों को नींद ज्यादा आती है, बच्चों को सोना ज्यादा आता है, लेकिन ये रिवायत का खुलासा है कि इतनी लंबी रात होगी कि बच्चे सोते सोते उठता जाएंगे, ऐसी लंबी रात होगी, और जानवर जंगलों में जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, इसलिए कि जानवर भी दिन के उजाले का इंतजार करते हैं कि कब उजाला हो, हम शिकार करें, अपना पेट भरे। लेकिन रात इतनी लंबी हो गई कि जानवर भी चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर देंगे, इसलिए जिन जंगलों में जानवर ज्यादा होते हैं उन जंगलों में सर्दियों ठंडी की रात में आवाज ज्यादा सुनने को मिलती है, गर्मियों में कम सुनने को मिलती है। जानवर जो अलग अलग जबान बोलते हैं, अलग अलग आवाज करते हैं, तो ठंडी की रातों में खूब सुनने को मिलता है और गर्मी की रातों में कम सुनने को मिलता है, इसलिए कि ठंडी की रातें लंबी होती है। वो जानवर भी इंतजार करते हैं कब सुबह हो, कब सुबह हो, और इसलिए वो आवाज करते हैं का जिस रात के बाद सूरज मगरिब से निकलेगा उस रात के अंदर इतनी लंबी रात होगी कि जानवर चिल्लाना शुरू कर देंगे, लेकिन सूरज नहीं निकलेगा, यहां तक के लोग घबरा जाएंगे और बेकरार होकर के रोना शुरू कर देंगे कि अल्लाह आज क्या हुआ, सूरज निकल नहीं रहा है। लोग रोएंगे, तोबा करेंगे। ये रात कितनी लंबी होगी? 3 या 4 रातों के बराबर लंबी रात होगी। ये निशानी याद रख लेना, तीन या चार रातों के बराबर लंबी रात होगी, यानी 48 या 36 घंटे की वो रात होगी, जिस रात के बाद सुबह में सूरज मगरिब से निकलेगा। और लोग सख्त घबराहट की वजह से, थोड़ी थोड़ी रोशनी, चिराग है, टॉर्च है, दूसरी लाइट है, ऐसी लाइट लेकर के सूरज को ढूंढने निकलेंगे, और वो रोशनी और उसके अंदर, यानी ये होगा कि उसके बाद सुबह के अंदर सूरज निकलेगा, और निकलेगा तो रोशनी बहुत कम होगी, जैसे अभी रोशनी होती हो नहीं रहेगी। सूरज ग्रहण के वक्त के ऊपर सूरज कैसा हो जाता है, ऐसी रोशनी के साथ सूरज निकलेगा। ये दो बड़ी निशानी खास याद रखने की, एक तो रात 36 या 48 घंटे की लंबी होगी, जिस रात के बाद सूरज सुबह में मगरिब से निकलेगा, और सुबह में निकलेगा तो दूसरी निशानी, जैसे ग्रहण लगने के वक्त पर उसकी लाइट एकदम कम और मामूली होती है, बस ऐसा निकलेगा, पूरी रोशनी के साथ नहीं निकलेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकलेगा, निकलकर धीमे 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 वो ऊपर चढ़ेगा, आसमान के बीच तक आएगा, पूरे आसमान पर नहीं आएगा। जैसे अभी सूरज पूरे आसमान पर आता है, सुबह में निकलेगा इधर से, पूरे आसमान का सफर करके मगरिब में जाता है, लेकिन उस दिन पूरे आसमान पर सूरज नहीं आएगा, मगरिब से निकलेगा, धीमे 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 चढ़कर के बीच में आएगा, और बीच में से ही वापिस लौट करके मगरिब में जाकर डूब जाएगा, पूरे आसमान पर नहीं आएगा। ये तीन बड़ी और अहम निशानियां जहन में रखने, एक तो रात होगी 48 या 36 घंटों की, और उसके बाद जो सूरज निकलेगा तो रोशनी एकदम मामूली चिराग जैसी होगी या गिरन लगे ऐसी, और तीसरी बात, सूरज निकल करके पूरे आसमान पर नहीं आएगा, बल्कि निकल कर धीमे 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 ऊपर चढ़ेगा, सर के ऊपर आएगा आसमान के बीच में, और यहीं से वापिस जो है चला जाएगा और जाकर के डूब जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत भी शहादत के तौर पर पढ़ के सुनाई, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि इतना बड़ा सूरज का निजाम अल्लाह ताला चला रहे हैं, उसका एक वक्त है, उस वक्त तक चलाएंगे, और जब वक्त आएगा अल्लाह ताला इस निजाम को दरहम बरहम कर देंगे। इस वक्त के ऊपर हमको ये मुशाहदा होता है, नजर आता है बाज मरतबा कि ये क्या, सब चीज के अंदर जो है हमको निजाम में गड़बड़ी नजर आ रही है, हर चीज में। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको पूछो, आज से 40 साल पहले क्या ये हालात थे दुनिया में, कि हर चीज में आदमी को गड़बड़ी नजर आ रही, हर चीज में। बहुत अमन सुकून चैन से दुनिया चलती थी, अगरचे आज की तरह इतनी एडवांस तरक्की वाली नहीं थी, इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने आलीशान मकानात नहीं थे, लेकिन कोई निजाम में गड़बड़ी नहीं थी, सब निजाम ठीक ठीक चलता था। और अब आप देख लो दुनिया में हर चीज में आपको निजाम में कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ न कुछ फसाद। मैं आपको सही बात कहूं, बाजार से लेकर घर तक, घर से लेकर मस्जिद तक, हर जगह निजाम के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हमको मिलेगी, कोई न कोई लाइन से, किसी न किसी शक्ल से, ये पूरे निजाम के अंदर गड़बड़ी, ये खुलासे में कयामत की अलामतों में से एक अलामत है। इसलिए कि जब कोई बड़ी मशीन बिगड़ने वाली होती है तो आहिस्ता 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 उसमें कुछ न कुछ मेंटेन शुरू होता है, और अखीर में जाके वो मशीन भंगार के हवाले हो जाती है। बस ये कायनात का निजाम, दुनिया का निजाम, अब लगता है ऐसा है कि अल्लाह ताला को ज्यादा चलाना मंजूर नहीं है। ये सारे निजाम की गड़बड़ी ये दलील है कि इसमें रिपेयरिंग शुरू, अल्लाह सुबहानहु व ताला जो है दरहम बरहम करके खत्म कर देंगे, पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह सुबहानहु व ताला जो है दरहम बरहम करके खत्म कर देंगे। अल्लाह इन आखिरी दिनों के अंदर हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी औलाद के ईमान की हिफाजत फरमाए, تمام اہل ایمان کی اللہ پورے عالم کے اندر حفاظت فرمائیں. ایک ضروری درخواست آپ حضرات سے, یہ جو دین ہے اس وقت پر, تو ہندوؤں کے تہواروں کے دن ہے, وہ اپنے اپنے تہواروں کو مناتے ہیں, تو ہمیں ان کو ان کے تہوار آزادی سے خوشی سے منانے کا موقع دینے کا. ان کے تہوار کے اندر کوئی مسلمان ان کو ڈسٹرب نہ کرے, خلل نہ کرے, یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے. اور ان کو ڈسٹرب کرنے کی بہت ساری شکل ہے, کوئی بھی شکل ہم نہ اپناویں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عید خیریت سے ہو, اس طرح ان کے تہوار بھی خیریت سے ہو, کسی تہوار کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو. اور اس میں ہمیں ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو خاص قابو میں رکھنے کا کہ یہ پٹاخے پھوڑنا وغیرہ کرنا یہ ان کا تہوار ہے, یہ ہمارا اسلامی تہوار نہیں. بہت سے والدین خود پیسے دیتے ہیں بچوں کو, یہ غلط ہے. خود خرید کے لا کے دیتے ہیں, وہ غلط ہے. بھائی ان کے ساتھ میل جول رکھنا, اچھے تعلق رکھنا, اچھے اخلاق رکھنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے اچھے اخلاق کی اچھی اچھی شکلیں ہیں کہ بھائی کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت کرو, کوئی غیر مسلم بیمار ہے اس کی خدمت کرو, دوا کرو, کوئی غیر مسلم پریشان ہے اس کی پریشانی میں مدد کرو, یہ طریقہ ہے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم وہ پٹاخے پھوڑے تو ہم بھی پٹاخے پھوڑنے بیٹھ جا رہے, یہ غلط بات ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو نوجوانوں کو خاص قابو میں رکھنے کا. وہ لوگ ان دنوں کے اندر زیادہ گھومتے پھرتے ہیں, تو ہمیں ان دنوں میں مسجد میں زیادہ رہنے کا, اللہ کے گھر میں رہنے کا, بھیڑ میں ہم بھیڑ نہ بڑھاوے, اس کا خاص خیال رکھنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, فتنوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. جذبات میں بھی نہیں آنا, معمولی معمولی باتوں میں گرم بھی نہ ہونا, معمولی معمولی باتوں میں غصے بھی نہ ہونا, بہت اعتدال سے, سکون سے. بھی اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو معاف کر دیجیے. رب کریم صحیح سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے پاپی ہیں, بڑے مجرم اور بڑے خطاکار ہیں. مولا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے. مولا اس زمین کے اوپر ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں اور آپ سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں. رب کریم آپ کو معافی بہت پسند ہے, مولا ہم کو اور پوری دنیا کے ایمان والوں کو معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے مولا, معاف کر دیجیے مولا. مولا ہم یقیناً گندے ہیں, لیکن آپ ہمیں کافروں کے حوالے نہ فرماؤ, فاسقوں کے حوالے نہ فرماؤ, ظالموں کے حوالے نہ فرماؤ. اے اللہ ظالموں کافروں فاسقوں فاجروں سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ ان کے شر سے حفاظت فرماؤ, ان کی شرارتوں سے حفاظت فرماؤ, ان کی سازشوں کو ناکام فرماؤ. اے اللہ ہمارے اراکانی بھائیوں کی حفاظت فرماؤ, اجڑے ہوں کو آباد فرماؤ. مولا ہم تو بہت عافیت میں ہیں مولا, بہت عافیت میں ہے مولا, بہت عافیت میں ہے مولا. تو عزت سے ہم کو رکھے ہوئے ہے مولا, ہمارے گناہ, ہماری نافرمانی, ہماری برائیاں, ہماری گندگیاں, ان سب کے باوجود مولا تو ہم کو عزت دیتا ہے, عافیت سے رکھتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. مولا ہمارے لاکھوں بھائی بہن ہے اللہ اس وقت بے سہارا ہے, اجاڑ دیے گئے ہیں میرے مولا. اے مسبب الاسباب اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اے بگڑی کے بنانے والے اللہ آپ کے پیارے نبی کی امت کی بگڑی کو بنا دیجئے. अल्लाह उजड़े हुओं को आबाद फरमा दे, बेघरों को घर अता फरमा दीजिए, बेसहारों को सहारा अता फरमा दीजिए, मजलूमों की नुसरत फरमा दीजिए। कैदोबंद में है उनको रिहाई अता फरमाओ, कैदोबंद में है उनको रिहाई अता फरमाओ, कैदोबंद में है उनको रिहाई अता फरमाओ। ए अल्लाह, बहुत से लोग इस वक्त कर्ज में डूबे हुए हैं, मौला उनका कर्ज अदा करवा दीजिए। मौला बहुत से भाई उनके पैसे रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, मौला बहुत बड़े बड़े इज्जत वाले लोग, मौला ये पैसों के फंस जाने की वजह से इस वक्त रोटी रोटी के मोहताज बने हुए हैं और इज्जत की वजह से किसी के सामने बोल नहीं सकते। ए अल्लाह, आप रास्तों को खोलने वाले हैं। ए अल्लाह, आफियत के साथ ए अल्लाह उनके रास्तों को खोल दीजिए, हर जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा फरमा दीजिए। मौला लोग किस्म किस्म की बीमारियों में मुब्तला है, मौला अल्लाह आप शाफी मुतलक है, आप शाफी मुतलक है, आप शाफी मुतलक है। अल्लाह अपने करम से बीमारों को शिफा आता फरमाओ। मौला इलाज भी इतने महंगे होते जा रहे हैं कि लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। मौला अल्लाह जाहिरी बीमारियों में भी शिफा दे दीजिए, बातिनी बीमारियों में भी शिफा दे दीजिए। जितने भी अल्लाह आपके बंदे और बंदियां बीमार है उनको शिफा आता फरमाओ। अल्लाह हमको आफियत में रखिए मौला। मौला बहुत से हमारे ईमान वाले भाई अल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबतों में उलझनों में है, बाज लोग जिन्नात और जादू और नजरे बद के असर से परेशान है अल्लाह। मौला अजीब अजीब परेशानियां हैं, अपने करम से जिन्नातों की शरारत से, नजरे बद से, जादू से अल्लाह हिफाजत फरमा। जिन पर ऐसे असरात है उनको अपने करम से शिफा अता फरमा। मौला घरों में जो झगड़े हैं उनमें जोड़ अता फरमा। मौला कैसे हालात उम्मत पर आ गए कि बाप बेटों में झगड़े हैं, बेटी और माँ में झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े हैं। मौला कता रहमी है मौला, आज मौला कैसा समाज हो चुका। आपके प्यारे नबी ने तो फरमाया था कौम में एक भी ताल्लुक को तोड़ने वाला होता है तो आप रहमत से महरूम कर देते हैं। मौला आज तो घर घर में कता रहनी है। अल्लाह जोड़ अता फरमाओ, जोड़ अता फरमाओ, मोहब्बतें अता फरमाओ। मौला बहुत सी हमारी बहनें शोहरों के जुल्म से परेशान है, अल्लाह बेटियां परेशान है, अल्लाह उनके शोहरों के दिलों में बात डाल दे कि वो अपनी बीवियों का हक अदा करे। मौला मौला हमारे बहुत से भाई बीवियों से परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बहुतों के घरों में जवान बेटे बेटियां हैं, अल्लाह उनके लिए मुनासिब रिश्ते अता फरमा। अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, उम्मत के जवानों की, मर्दों की, औरतों की, बहनों की, बेटियों की हिफाजत फरमा, इनकी इस्मत इफ्फत पाक दामनी की हिफाजत फरमा, हर हराम से हिफाजत फरमा। अल्लाह आपकी मोहब्बत सबको अता फरमा दे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमा दे, सुन्नत का इत्तिबा अता फरमा दे, तकवा वाली जिंदगी अता फरमा दे, जिक्र शुक्र की कसरत अता फरमा दे, मस्जिद से मजबूत ताल्लुक अता फरमा दे, नमाजों का एहतमाम अता फरमा दे, पर्दा अता फरमा दे, हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे, बार बार जिंदगी में मक्का मदीना की हाजिरी अता फरमा दे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमाओ, जिन शुरूर से पना चाहिए हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाओ। मौला किसके पास जावे, आपके सिवा कौन हमारा है, आपका दर है, आपका घर है। अल्लाह आपका फजल करम हमें अता फरमाओ, आपकी मेहरबानी अता फरमाओ। मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, हमारी जायज मुरादों को पूरा फरमा दीजिए, जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। आपके बहुत से बंदे और बंदियों ने मुख्तलिफ मकासिद के लिए दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उन सब के जायज मकासिद पूरे फरमाओ। मौला इंसानियत को हिदायत दे दीजिए, करीम आपके खजाने में कमी क्या है। मौला मौला जमीनों पर बसने वाले तमाम इंसानों को ईमान वाला बना दीजिए, तमाम जिन्नातों को ईमान वाला बना दीजिए, पूरे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दीजिए। अल्लाह घर घर में ईमान जिंदा फरमा दीजिए। अल्लाह इस मुल्क में भी अपनो अमन कायम फरमाओ मौला, अपनो अमन कायम फरमाओ, अपनो अमन कायम फरमाओ, फितने फसाद झगड़ों से हिफाजत फरमाओ। अल्लाह फितने फसाद झगड़ों से हिफाजत फरमाओ, फितने फसाद झगड़ों से हिफाजत फरमाओ। यहाँ जितनी कौम और मजहब के लोग रहते हैं उनमें आपस में रवादारी अता फरमाओ, एक दूसरे का हक अदा करने वाला बनाओ। कयामत तक अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों को तरक्की के साथ बाकी फरमा। मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, मराकिस की, दीनी शाइर की, दीन के कामों के काम करने वालों की हिफाजत फरमाओ। हमारी इन दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमाओ। हमारी औलाद की इस्लामी तालीम और तरबियत आप ही फरमा दीजिए। हमारी जिंदगी, हमारी औलाद और नस्लों की जिंदगी आपके दीन की मकबूल खिदमात के लिए कबूल फरमा लीजिए। وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين 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 يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
to party and love it.